श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर की निकटता में रहते हुए फिर से आज परमेश्वर के वचन में से सीखने और सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से यशाया नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन में हम देख रहे थे कि परमेश्वर राज करता है, वह मनुष्यों पर राज्य करता है और इसराइल के समक्ष तो वह प्रस्ताव भी रखता है कि वे उसमें विश्वास करें, क्योंकि वह उन्हें याकूब की नाई अपना राजकुमार और अब्राहम की नाई अपना मित्र बनाना चाहता है। आज हम अपने अध्ययन में उससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जिसे आपने हम सब के लिए दिया है ताकि हम फिर से आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचनों में से सीखते हैं, सुनते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि हर एक जन आज जब आपके वचन में से सुने अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सके। हमारी प्रार्थना उन तमाम भाई बहनों के लिए है जो निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं या बीमार अवस्था में हैं, नौकरी की तलाश में हैं, अपने जीवन साथी की तलाश में हैं या किसी प्रकार के तनाव और दबाव में हैं। पिताजी, आप उन्हें अपनी शांति प्रदान करें, उन पर अनुग्रह करें। आज के वचन के द्वारा आप उनसे बोले और बातचीत करें। इस समय फिर से हम सभी को आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, अब वह मूर्तियों की चुनौती को देता है जिसे हम यशाया 41 अध्याय के 21 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा कहता है, अपना मुकदमा लड़ो। याकूब का राजा कहता है, अपने प्रमाण दो। मेरे प्रियो, यह मूर्तियों को उसकी चुनौती है। मूर्ति पूजक कौन है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप भी एक मूर्ति पूजक हो सकते हैं? आपके और परमेश्वर के मध्य आने वाली प्रत्येक बात आपकी मूर्ति है, चाहे वह कुछ भी क्यों ना हो, वह आपकी मूर्ति ही है। आप जिस बात में अपना समय लगाते हैं, अपनी ऊर्जा गंवाते हैं, आपका धर्म भी आपकी मूर्ति पूजा हो सकता है। परमेश्वर के साथ आपके निजी संबंधों में जो भी आ जाए, अर्थात आपके बीच में जो भी आ जाए, वह आपकी मूर्ति है। मूर्तियों में क्या करने की क्षमता है? क्या वे जगत की उत्पत्ति आपको समझा सकती हैं? क्या आप क्रमिक विकास की परिभाषाओं से संतुष्ट हैं? निसंदेह उनमें अनेक धारणाएं हैं, परंतु परमेश्वर कहता है, उन सबको ले आओ। आज हम में से कई लोगों के लिए उनकी मूर्तियां घमंड, कुछ लोगों के लिए पैसे और कुछ लोगों के लिए उनके ओहदे, ये उनकी मूर्तियां हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, उन सब को ले आओ। यशाया की पुस्तक 41 अध्याय के 22 पद में लिखा है, वे उन्हें देकर हमको बताएं कि भविष्य में क्या होगा, पूर्व काल की घटनाएं बताओ कि आदि में क्या क्या हुआ, जिससे हम उन्हें सोचकर जान सकें कि भविष्य में उनका क्या फल होगा, या होने वाली घटनाएं हमको सुना दो। मेरे मित्रों, मनुष्य न तो अपना आरंभ जानता है और न ही जगत का आरंभ जानता है। चाहे वह किसी भी सिद्धांत को माने, वह कुछ नहीं जानता। मेरा अनुमान है कि अगले 50 वर्षों में क्रम विकास के समर्थक लज्जित होंगे, क्योंकि क्रम विकास के सिद्धांत समय के उस कूड़े में होंगे जो समय के साथ साथ त्यागे गए विचारों का कूड़ा होगा। आज जगत की उत्पत्ति के अनेक विचार जो कभी माननीय थे, चर्चा योग्य भी नहीं ठहरे हैं। समय के अंतराल में क्रम विकास का विचार भी कूड़ा में चला जाएगा, अर्थात कूड़ा हो जाएगा। इसके बाद मनुष्य किसी और कल्पना की ओर दौड़ेंगे। मनुष्य न तो अपनी उत्पत्ति के बारे में कुछ जानता है और न ही अपने भविष्य के बारे में। मनुष्य एक अज्ञानी प्राणी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ज्ञान कितना सीमित है? मनुष्य के पास सबसे बड़ी PhD की उपाधि है, परंतु फिर भी उसका ज्ञान नहीं के बराबर ही है। मैंने एक PhD अध्यार्थी के बारे में सुना। वह मच्छर की आंख पर अनुसंधान कार्य कर रहा था। यह एक असाधारण विषय है। एक दिन अध्ययन करते समय उसे अकस्मात ही यह बोध हुआ कि उसका संपूर्ण जीवन मच्छर की आंख देखने में ही न लग जाए। मैं उनकी मनोदशा समझ सकता हूँ। मैं भी एक या दो बार से अधिक मच्छर की आंख में देखना नहीं चाहूंगा, क्योंकि यह एक नीरस काम है। अतः उसने सोचा कि उसे कुछ और करना चाहिए। उसने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया। उसे उपाधि मिल गई और उसने किसी लाभकारी वस्तु की खोज कर ली थी। आज वह सुसमाचार का सेवक है। मेरे मित्रों, यह बड़ी रोचक बात है कि मनुष्य बहुत शिक्षा प्राप्त कर सकता है, सबसे बड़ी शैक्षिक उपाधि भी प्राप्त कर सकता है, परंतु उसका ज्ञान नहीं के बराबर ही रहता है। वह अपनी उत्पत्ति और अंतिम लक्ष्य के बारे में अज्ञानी ही है। मूर्ति उसे यह नहीं बता सकती। अतः जिसके पास इन बातों के उत्तर हैं, उसके पास जाना ही उचित है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह आपको सब बातें बता दे, परंतु सर्वज्ञानी को जानना एक अच्छी बात है। मुझे विज्ञान का अधिक ज्ञान तो नहीं है, परंतु मैं अपने कॉलेज के विज्ञान विभाग में लिखे एक नारे को जानता हूं। ज्ञान का अगला चरण है यह जानना कि ज्ञान कहां से मिलेगा। ध्यान दीजिए, ज्ञान का अगला चरण है यह जानना कि ज्ञान कहां से मिलेगा। मैं बहुत सी बातें नहीं जानता, परंतु उसे जानता हूं जो सब जानता है। यदि मुझे कुछ जानने की आवश्यकता है तो मैं परमेश्वर से पूछूंगा, अर्थात परमेश्वर मुझे बताएगा। यशाया के पुस्तक 41 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, देखो तुम कुछ नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं बनता, जो कोई तुम्हें चाहता है वह घृणित है। मनुष्य अपने से पूर्व का समय नहीं बता सकता और न ही परमेश्वर के बिना भविष्य बता सकता है। परमेश्वर के बिना उसका संपूर्ण प्रयास व्यर्थ एवं खोखला है। मेरी कलीसिया में जहां मैं जाता हूं, एक सदस्य आकर मुझसे कहने लगा, यदि आप मुझे जीने का सार्थक कारण नहीं बता सकते तो मैं आत्महत्या करके सब समस्याओं का समाधान कर लूंगा। मेरे मित्रों, आप ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करेंगे? उसके हाथ में एक पुरानी बंदूक थी। मैंने उससे कहा, यदि आप मुझे समझा दें कि आप आत्महत्या करके जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे कर पाएंगे, तो मैं आपको इससे भी अच्छी एक बंदूक दूंगा कि आप आत्महत्या करने से चूक न जाएं। सीधी सी बात तो यह है कि यदि आप मसीह के निकट आकर अपना जीवन उसे न दें, उसे अपने जीवन में न आने दें, तो मैं आपके द्वारा आत्महत्या न करने का कोई कारण नहीं देखता। वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने तो सोचा था कि मैं उसे जीने के लिए कई बातें समझाऊंगा। उसने अपनी बंदूक नीचे की और चला गया। यद्यपि वह तुरंत मसीह के पास नहीं गया, परंतु बाद में उसने प्रभु को ग्रहण किया, क्योंकि उसने देखा कि प्रभु यीशु के पास उसकी समस्याओं का समाधान है। यशाया की पुस्तक 41 अध्याय के 29 पद में लिखा है, सुनो उन सबों के काम अनर्थ हैं, उनके काम तुच्छ हैं और उनकी ढली हुई मूर्तियां वायु और मिथ्या हैं। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, मिथ्या मूर्ति पूजा और दर्शन शास्त्र का अंतिम परिणाम है। जो परमेश्वर विरोधी या नास्तिकवाद है उसमें जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं है। मानव निर्मित ये आस्था तंत्र मनुष्य के मन को शांति नहीं दे सकते। उत्तर उसी में पाया जाता है जो बड़े आनंद का संदेश सुनता है और सुनाता है। मेरे प्रियो, यहां पर अध्याय 41 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 42 में देखेंगे, जिसका विषय है यहोवा का दास प्रभु यीशु दंड का साधन, मूर्तियां यहोवा का दास राष्ट्र। यशाया प्रत्येक अध्याय में शनय शनय अर्थात धीरे धीरे मूर्ति पूजा के त्याग की ओर बढ़ रहा है जो इसराइलियों के बीच में थी। इस अध्याय में हम देखेंगे कि इसराइल देश परमेश्वर का दास कहलाता है। प्रभु यीशु मसीह को भी मरकुस परमेश्वर का दास कहता है। मरकुस 10 अध्याय उसके 45 में वह स्पष्ट कहता है, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। मत्ती रची सुसमाचार 12 अध्याय उसके 17 से 21 पद में प्रभु यीशु के संदर्भ में इस भविष्यवाणी को व्यक्त किया गया है, यहोवा का दास यीशु। आइए हम पढ़ें यशाया के पुस्तक 42 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, देखो, देखो से अर्थ है प्रभु यीशु को निहारने की खुली पुकार। यशाया 42 अध्याय के 3 पद में लिखा है, कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा, वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। मेरे मित्रों, यह पद इस पृथ्वी पर देहधारी प्रभु यीशु के जीवन और सेवा का चित्रण है। कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा। परमेश्वर पाप के विरुद्ध न्याय लेकर नहीं आता है, वह पाप को अपना दंड स्वयं लाने देता है। न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। पाप में मगन मनुष्य अंत में देखेगा कि पाप ज्वालाओं में फटता है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, यह सदा सत्य है, आप इसे बदल नहीं सकते। मेरे मित्रों, यह एक अद्भुत अध्याय है क्योंकि इसमें प्रभु यीशु परमेश्वर यहोवा का दास कहा गया है। हम पढ़ते हैं यशाया के पुस्तक 42 अध्याय उसके 6 और 7 पद में लिखा है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। इस पृथ्वी पर जब वह पहली बार अर्थात प्रभु यीशु पहली बार आया था, तब उसने इन चमत्कारों के द्वारा अपने राजा होने का प्रमाण दिया था। वह जगत की ज्योति बनकर के आया था, जैसा कि हम लूकार्ची सुसमाचार 2 अध्याय उसके 32 पद में पाते हैं। शमौन ने कहा कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इसराइल की महिमा हो। मेरे मित्रों, मूर्ति पूजा का दंड मूर्तियां हैं। अब यशाया मूर्तियों के विरोध परमेश्वर का अभियोग सुनाता है, तो आइए हम देखें यशाया 42 अध्याय के 8 पद में लिखा है, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। परमेश्वर अपनी महिमा किसी के साथ नहीं बांटेगा। वह मूर्ति पूजा के दंड और उसके कारण आने वाले परमेश्वर के प्रकोप की चर्चा करेगा। वह कहता है यशाया 42 के 15 पद में, पहाड़ों और पहाड़ियों को मैं सुखा डालूंगा और उनकी सब हरियाली झुलसा दूंगा, मैं नदियों को द्वीप कर दूंगा और तालों को सुखा डालूंगा। पृथ्वी उसके दंड से प्रभावित होगी। यशाया 42 के 16 पद में आगे कहता है, मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको न त्यागूंगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई इसी प्रकार से करता है। आप और मैं भविष्य के प्रति अंधे हैं, परंतु वह नहीं है। वह सब विश्वास करने वालों की अगुवाई करेगा, क्योंकि वह जानता है कि उसे अपने विश्वासियों को कहां लेकर के जाना है। हम यशाया 42 उसके 17 पद में पढ़ते हैं, जो लोग खुदी हुई मूर्तों पर भरोसा रखते और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं तुम हमारे ईश्वर हो, उनको पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। देखिए, मूर्ति पूजकों को आने वाले दंड की चेतावनी दी गई है जो यशाया यहां पर कहता है। आगे हम देखते हैं कि यहोवा का दास अर्थात इसराइल देश, यशाया 42 अध्याय के 19 पद में लिखा है, मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है, मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहिरा है, मेरे मित्र के समान कौन अंधा, या यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है। वह अपने अंधे दास को इसराइल कहता है। यह परमेश्वर का अपनी प्रजा पर दोषारोपण है। यशाया 42 उसके 22 में आगे लिखा है, परंतु ये लोग लुट गए हैं, ये सब के सब गढ़ियों में फंसे हुए और काल कोठरियों में बंद किए हुए हैं, ये पकड़े गए और कोई इन्हें नहीं छुड़ाता, ये लुट गए और कोई आज्ञा नहीं देता कि लौटा दो। इस पद का विषय इसराइल है। ये लोग लुट गए हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को त्याग कर मूर्तियों की उपासना की है, जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें मना किया था। यशाया 42 अध्याय के 24 पद में लिखा है, किसने याकूब को लुटवाया और इसराइल को लुटेरों के वश में कर दिया, क्या यहोवा ने यह नहीं किया, जिसके विरोध हमने पाप किया, जिसके मार्गों पर उन्होंने चलना न चाहा और न उसकी व्यवस्था को माना। लोग और देश अर्थात इसराइल, परमेश्वर ने उसे विस्थापित कर दिया था, परंतु वह उन्हें पुनः स्वदेश लौटा लाएगा। यशाया की पुस्तक 42 अध्याय के 25 पद में लिखा हुआ है, इस कारण उस पर उसने अपने क्रोध की आग भड़काई और युद्ध का बल चलाया, और यद्यपि आग उसके चारों ओर लग गई तो भी वह न समझा, वह जल भी गया तो भी न चेता। मेरे मित्रों, परमेश्वर की ताड़ना से भी उन्होंने मन नहीं फिराया और न ही परमेश्वर के पास आए। क्या इससे परमेश्वर का उद्देश्य प्रभावित हुआ? उत्तर है निश्चय ही नहीं, जिसे हम अगले अध्ययनों में देखेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज मेरे जीवन में और आपके जीवन में भी किसी न किसी प्रकार की ताड़नाओं को आने देता है, ताकि हम उससे प्रेम करें और उसकी ओर फिरें। वह चाहता है कि हम उसके निकटता में आए, लेकिन हम उसकी ओर नहीं आते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर अध्याय 42 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 43 और 44 में देखेंगे, जिसका विषय है अतीत का स्मरण, सृष्टि, उद्धार, इसराइल की रक्षा, भविष्य, भावी दंड, मुक्ति, इसराइल का उद्धार, आत्मा की प्रतिज्ञा, मूर्ति पूजा का विवाद, कुसरो की भविष्यवाणी। धर्मशास्त्र का यह भाग और विशेष करके यह अध्याय स्पष्ट करता है कि परमेश्वर ने इसराइल से संबंध विच्छेद नहीं किया है। इसराइल के लिए परमेश्वर की भावी योजना को अस्वीकार करना अविश्वास के बराबर है। नए नियम में पौलुस एक प्रश्न पूछता है, रोमियों की पत्री 11 अध्याय उसके 1 पद में, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? इसका उत्तर है कदापि नहीं। यह एक अत्यधिक निर्णायक उत्तर है। परमेश्वर का प्रयोजन अभी उनके साथ समाप्त नहीं हुआ है। वह इन अध्यायों में स्पष्ट करता है अतीत का अवलोकन, सृष्टि, उद्धार और इसराइल की सुरक्षा। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यशाया की पुस्तक 43 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, हे इसराइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। मेरे मित्रों, इससे अधिक स्पष्ट और क्या कहा जा सकता है। परमेश्वर इस संपूर्ण अंश में इसराइल ही की चर्चा करता है, और मेरे विचार में आप यदि जानबूझकर भ्रम में पड़ना चाहें तो अलग बात है, अन्यथा इसमें भ्रम का नाम ही नहीं है। यशाया उनकी उत्पत्ति की चर्चा करता है। तेरा सृजनहार यहोवा, परमेश्वर ने एक शोचनीय नमूना याकूब को चुना, जिसके नाम का अर्थ है धूर्त। परमेश्वर ने उसे एक जाति की रचना की। परमेश्वर ने मिट्टी से एक मनुष्य को बनाया, पुतले को बनाया और उसमें सांस फूंककर मनुष्य को जीवित किया। इस मनुष्य ने परमेश्वर से विद्रोह किया। अब परमेश्वर प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों से परमेश्वर के पुत्रों की रचना कर रहा है। यह मेरा आरंभ था जो बहुत बुरा था। मैं कर्म विकास में विश्वास नहीं करता कि मैं बंदर था, विकसित रूप में हूं। मैं तो वास्तव में बंदर से भी बुरा था। मेरे मित्रों, मैं एक विद्रोही पापी का विकसित रूप हूं जो शारीरिक रूप से मिट्टी था। पहले आदम ने मुझे पतित स्वभाव दिया जो कभी सुधारेगा नहीं, अर्थात किसी के द्वारा, किसी मनुष्य के द्वारा वह नहीं सुधरेगा और न ही कभी बदलेगा। परंतु परमेश्वर ने मुझे एक नया स्वभाव दिया है। याकूब से आरंभ करके परमेश्वर ने एक जाति बनाई, फिर उसने उन्हें लहू और सामर्थ के द्वारा मिस्र से निकाला और इस प्रकार वे इसराइल राष्ट्र बने, परमेश्वर का राजकुमार। वे सृजन और मुक्ति के कारण परमेश्वर के हैं। यशाया के पुस्तक 43 अध्याय के 2 पद में लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। जी हाँ, यह एक प्रतिज्ञा है जो विशेष करके इसराइल और उनकी पूर्वकालिक मुक्ति के संबंध में है, जब उन्होंने लाल सागर और यर्दन पार की थी। इसमें सब समयों में परमेश्वर की संतान के लिए ही अद्भुत आत्मिक प्रसंग भी है। जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा। कभी कभी मैं अपने अनुभव में गहरे जल में चला जाता हूं, जब मैं तल को छू नहीं पाता हूं, परंतु मेरे पास परमेश्वर का आश्वासन है कि परमेश्वर वहां मेरे साथ है। मैं सोचता हूं कि मैं डूब जाऊंगा, परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वे तुझे न डुबा सकेंगे। वह अपने हस्तक्षेप द्वारा मुझे बचा लेता है। मैं आपको सच कहना चाहता हूं कि मैं पानी में अलग अलग स्थानों में 7 बार डूबने से बचा, और आज मुझे पता है कि यह परमेश्वर के द्वारा हुआ है। यशाया 43 अध्याय के 3 पद में कहता है, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इसराइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूं। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूं। वह उद्धार दिलाने में अपने ऊंचे मानदंड को कम नहीं करता है। परमेश्वर मिस्र और इथोपिया को इसराइल का मुक्ति धन क्या देगा? वह कहता है, मैंने इन राष्ट्रों को तेरा दंड बनाया कि तुझे अनुशासन सिखाऊं। मैंने उन्हें अनुमति दी कि तेरे साथ ऐसा व्यवहार करें, अब मैं उन्हें दंड दूंगा। नीति वचन की पुस्तक 21 अध्याय के 18 पद में लिखा है, दुष्ट जन धर्मी की छुड़ौती ठहरता है और विश्वासघाती सीधे लोगों के बदले दंड भोगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर ने आपके बैरी को आपके मार्ग की बाधा क्यों होने दिया? कि आपको कष्ट दे, आपको सीधे मार्ग में लाने और आपका आत्मिक विकास करवाने के लिए। परमेश्वर ने उसे आपकी छुड़ौती के लिए दिया है। नीति वचन 11 उसके 8 में लिखा है, धर्मी विपत्ति से छूट जाता है परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। परमेश्वर ने अनेकों को अनुमति दी कि मेरे साथ दुर्व्यवहार करे। मैंने परमेश्वर से बातें की, मैं सोचता था कि वह मुझे प्रताड़ित कर रहा है, परंतु बाद में मैंने देखा कि परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। मैं सच कहता हूं कि उन्हें दंड पाता देख मुझे बड़ी शांति मिली। परमेश्वर ने उनको साधन बनाकर मेरे जीवन में सुधार किया और फिर उन्हें सुधारा। यशाया की पुस्तक 43 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। मेरे मित्रों, हम कल्पना नहीं कर सकते कि परमेश्वर इसराइल से कैसा प्रेम रखता है। हम यह भी नहीं सोच सकते कि हम परमेश्वर के लिए कितने मूल्यवान हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी के नाश होने से वह प्रसन्न नहीं होता, अर्थात वह चाहता है कि उसका प्रत्येक सृष्टि, प्रत्येक रचना, हर एक मनुष्य उसके पास आए, पापों से छुटकारा पाए, उद्धार पाए और उस आनंद को प्राप्त करे जो वह उसे देना चाहता है। मेरे प्रिय मित्रों, आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, परंतु मैं इस बात से अत्यंत खुश हूँ कि आज आपने परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषों को प्राप्त किया है। आप इस बात को जान गए हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। छोटी मोटी कठिनाइयां जो आपके जीवन में है इसलिए है ताकि आप और अधिक करीब आएं। कई बार परमेश्वर हमारे शत्रुओं को हमारे लिए खड़ा कर देता है ताकि वह मुझे और आपको सिखाए। क्या आज आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? आइए हम प्रभु के पास आएं और प्रभु से कहें कि आप मेरी सहायता करें। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है,
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है,
यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है,
यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूला है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूला है,
कभी नहीं भूला है, कभी नहीं भूला है,
कभी नहीं भूला है, कभी नहीं भूला है,
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है,
मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूला है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूला है,
कभी नहीं भूला है, कभी नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं।